Welcome friends to Literature Mantra, I'm Harsh Singh. In the last lecture, we discussed what was Renaissance, what was Reformation, and what was Renaissance Humanism. Okay? Now, in this lecture, we'll discuss the important writers. Okay? John Skelton, Thomas Malory, and some other writers also during this period from 1400 to 1558. Is beech mein. After that, the evolution of drama, miracles, moralities, mysteries, how they evolved, and what is the difference between all of these three. After that, we'll also take up which were the first comedies and tragedies that were written. Okay? Now, let's begin with John Skelton. Whenever you read about John Skelton, the first important fact that you should remember is what is Skeltonics. Okay? Skeltonics kise kehte hain? Skeltonics. Skeltonics. What is Skeltonics? Now, is pe direct sawal pehle aa chuka hai. That's why I'm starting off with this. Now, as a definition, Skeltonics refers to short verses of an irregular meter. Okay? It's just a kind of verse. So, short verses of an irregular meter. Use kehte hain Skeltonics. And what is interesting about this Skeltonics is, these are rhyming lines. Okay? Rhyming lines hote hain and based on natural speech rhythms. Okay? In Skeltonics, these are rhyming lines. After that, what are the important works by John Skelton? First of all, who was John Skelton? See, John Skelton was a poet as well as a satirist. Okay? He wrote on political subjects as well as religious subjects. His dates are from 1460 to 1529. Okay? Ye dates hain inke. Now, the first important work that he has written is called Magnificence. Okay? Magnificence. This was written in the year 1516. Okay? 1516. And this is regarded as the first secular morality play. Okay? First secular morality play in English. And it is also a kind of political satire. Okay? Uske baad ek aur inka work hai, bahut hi famous hai. It's called Philip Sparrow. Okay? Philip Sparrow. Isme kai baar ye pooch lete hain that what is the name of the sparrow? As the name indicates, it is Philip. Okay? And the sparrow is killed by a cat. So literally speaking, it is a kind of lament. Okay? A kind of lament for the death of this pet. And sometimes what they do is, they also ask you what is the name of the cat which killed the sparrow. Okay? The name of the cat is Gib. G-I-B, Gib. That is the short name and the full name is Gilbert. Okay? Gilbert hai naam uska. So apparently it is a kind of lament or a kind of elegy. Okay? But at the second level of meaning, it is also a kind of satire. Satire on the liturgical office of the dead. Okay? Now in Christian religion, there is the liturgical office for the dead. The office or part of the church which carries out the ceremonies after somebody's death. Okay? Use kehte hain liturgical office for the dead. And this poem is a kind of satire, a kind of lampoon against the liturgical office for the dead. Okay? Philip Sparrow. Now one more work of John Skelton you should keep in mind. It's called Where the Hawk. Okay? Where the Hawk. So as the name indicates, it's about a hawk. It's about a bird. Okay? So what was the reason why John Skelton wrote this? See, it is a kind of angry attack. Okay? On a priest who had a bad habit of hunting. Okay? And he had flown his hawk, his eagle or hawk, into Skelton's church. Into the church of John Skelton. Isliye ek tarike ka ek denunciation hai. That this is a bad habit that you are engaging in. Okay? So, just remember these few points. One, what is Skeltonics? Uske baad, what is Magnificence? It is called the first secular morality play. Okay? They can ask you this. Uske baad, Philip Sparrow, what is the name of the sparrow? What is the name of the cat? And afterwards, Where the Hawk? Okay? Where the Hawk? Now, uske baad, do aur work hai inke, John Skelton ka. Next one is called Bouge of Court. Okay? Bouge of Court. Ye kis cheez ke baare mein hai? It's a kind of satire of the disheartening experience of life at court. Okay? His, matlab, the life of John Skelton at court. It is about his disheartening experience. Okay? Uske baad ek aur work hai inka. The Tuning of Eleanor Rumming. Okay? The Tuning of Eleanor Rumming. Isme kya hota hai? There is a portrayal of a drunken woman in an alehouse. Alehouse kise kehte hain? Alehouse is basically a kind of bar. A bar where alcohol is sold. Okay? Now let me tell you the spelling of both of these. Bouge of Court and The Tuning of Eleanor Rumming. Pehla Bouge of Court. B-O-U-G-E. Bouge of. Pata hi aapko. Then Court. C-O-U-R-T-E. Okay? That is the modern spelling. Uske baad maine aapko bataya Tuning of Eleanor Rumming. Tuning ka T-U-N-N-I-N-G. Tuning of Eleanor. E-L-E-N-O-R. Eleanor. Uske baad Rumming. R-U-M-M-I-N-G. Rumming. Okay? And both of these are poems. Okay? Both of them. The Bouge of Court and Tuning of Eleanor Rumming. Now after that, coming to the works of Sir Thomas Malory. Okay? Thomas Malory ka aapne naam suna hoga. It's very important to know about his works. And the greatest work that he has written is called Limote di Arthur. Okay? Limote di Arthur. It was published in the year 1470. Now before that, let me tell you the dates of Sir Thomas Malory. His dates are from 1415 to 1471, ठीक है, 1415 टू 1471. सो व्हाट इज दिस ली मोटे डी आर्थर अबाउट? इट इज अबाउट द लेजेंडरी किंग आर्थर, ठीक है, हिज राइज एंड फॉल. बिकॉज किंग आर्थर, द फिगर ऑफ किंग आर्थर इज मेंशनड इन मेनी मेनी बुक्स बाय मेनी मेनी राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. इफ यू रीड फ्रॉम द एज ऑफ चौसर, मिडल एजेस एंड एज ऑफ चौसर टिल द मॉडर्न टाइम्स, दिस लेजेंड, दिस फिगर इज वेरी मच यूज. ठीक है, बेसिकली एक राजा थे वहां के. सो वट हैपन्स इन दिस बुक इज इट टेल्स द एडवेंचर्स ऑफ द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. ठीक है, बिकॉज वट किंग आर्थर डेड वॉज ही हैड अ राउंड टेबल इन विच ही हैड वेरियस फ्रेंड्स जिनको नाइट्स कहते थे. ऑल ऑफ देम वर वॉरियर्स एंड ही हैड अ राउंड टेबल फॉर वन रीजन, सो दैट देर इज नो एलिमेंट ऑफ हायरार्की. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा दैट यू नो व्हेनेवर देर इज अ मीटिंग इन विच पीपल डू सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, द बॉस सिट्स एट वन एंड एंड ऑल द अदर पीपल सिट ऑन ईदर साइड. बट हियर किंग आर्थर डिड नॉट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ हायरार्की, दैट इज वाई ही हैड अ राउंड टेबल. सो एवरीबडी सैट अराउंड दैट टेबल, नोबडी हैड एनी काइंड ऑफ हायरार्की, नोबडी बिग, नोबडी स्मॉल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट किंग आर्थर वॉज द किंग. ठीक है, सो दिस बुक ली मोटे डी आर्थर, ठीक है, एल ई एम ओ आर टी ई, ली मोटे डी डी एंड देन आर्थर ए आर टी एच यू आर डी, ली मोटे डी आर्थर. It just tells about the adventures of the Knights of the Round Table in a chronological sequence, beginning with the birth of King Arthur, okay? And their fellowship, you know, eventually, the fellowship which existed between the knights and King Arthur, eventually it came to an end. How? It was due to the adultery practiced by two knights called Lancelot and Guinevere, okay? L-A-N-C-E-L-O-T, Lancelot, and the other one was called Guinevere, G-U-I-N-E-V-E-R-E, Guinevere. ठीक है, ये नाम याद रखना बिकॉज दीज टू नेम्स आर वेरी वेरी फेमस. एंड एज आई टोल्ड यू दैट द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर, द फिगर ऑफ किंग आर्थर इज मेंशनड ऑल्सो इन अर्लियर वर्क्स. ठीक है, इफ यू रीड द वर्क रोमन डी ब्रूट, ठीक है, रोमन डी ब्रूट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1155, ठीक है, बाय वेस, W-A-C-E, राइटर का नाम है. इवन इन दैट वर्क वेस मेंशंस द फिगर ऑफ किंग आर्थर. ठीक है, एंड अनदर बुक वेयर यू विल फाइंड मेंशन ऑफ किंग आर्थर इज द बुक The History of the Kings of Britain, ठीक है, The History of the Kings of Britain, written by Geoffrey of Monmouth, ठीक है, This is even before the times of Chaucer, ठीक है, ये इतने पुराने राइटर हैं, Geoffrey of Monmouth, ठीक है, His dates are from, you know, 1100 to 1154. Now we are considering the period from 1400 to 1558, ठीक है, So मैं आपको just reference दे रहा हूँ कि the legend of King Arthur is repeatedly mentioned by so many writers, ठीक है, and even in the work by Geoffrey of Monmouth, the History of the Kings of Britain, ठीक है, this is basically written in Latin, ठीक है, Latin में लिखा गया था ये पहली बार, and it just tells the history of Britain, ठीक है, which begins with the founding of Britain by, you know, the Trojan warrior Brutus, ठीक है, and then carries on with the entire story and, you know, ends with the death of King Arthur and the return of the Saxons, ठीक है, so सारा कुछ mention किया है शुरू से अंतिम तक इन्होंने. And if you are more curious to know about King Arthur, okay, you can also watch a Hollywood film. You know, if you search on the internet, King Arthur, okay, A-R-T-H-U-R, Arthur, ये नाम है इसका, ठीक है? If you search, you'll find a film also, you can watch that. If you are curious to know, you can watch this film, okay? Now, after these two important writers, okay, Sir Thomas Malory and John Skelton, few more works are there, okay, just works, name of these works are important. ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट अबाउट दोज राइटर्स, बट फ्यू वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिकॉज उस पर रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, एंड इवन इन फ्यूचर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज थॉमस मूर. ठीक है, थॉमस मूर्स वर्क कॉल्ड यूटोपिया. ठीक है, यूटोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1516. ठीक है, उसके बाद देर इज अ फेमस वर्क कॉल्ड टैक्सोफिलस द स्कूल ऑफ शूटिंग. ठीक है, टैक्सोफिलस द स्कूल ऑफ शूटिंग व्हिच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1545. And the name of the writer is Roger Ascham. ठीक है, Roger Ascham, A-S-C-H-A-M, Roger Ascham. उसके बाद एक और राइटर है called Erasmus. ठीक है, Erasmus is very famous. He wrote Praise of Folly. ठीक है, Praise of Folly, F-O-L-L-Y, Praise of Folly, and this was published in the year 1511. ठीक है, 1511 में पब्लिश हुआ था. And as I told you about Thomas Malory's work, Lee Motte D. Arthur, which was published in the year 1470. ठीक है, And one more fact I want to point out, ये जो work है, you know, Taxophilus, the School of Shooting, ठीक है, by Roger Ascham. What is the meaning of Taxophilus? इसका मतलब क्या है? Now, इसका broadly ये मतलब है lover of the bow, ठीक है, lover of the bow, B-O-W. और bow से मतलब है, जैसे कि तीर धनुष होता था ना पहले, तो धनुष को बोलते हैं ये लोग bow. ठीक है, इन ब्रिटेन लॉन्ग बाव आर्चरी इज वेरी फेमस, ठीक है, तो उसी पे ये किताब लिखी हुई है, ठीक है, टॉक्सोफिलस द स्कूल ऑफ शूटिंग। ओके, नाउ आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। सो हाउ डिड इंग्लिश ड्रामा बिगिन एंड व्हाट इज द मिरेकल्स, व्हाट आर द मिस्ट्रीज, मोरालिटीज, इंटरलूड्स, इनमें डिफरेंस क्या है? सी आई एम मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज देर हैव बीन डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन मिरेकल्स, मिस्ट्रीज, मोरालिटीज एज वेल एज इंटरलूड्स। ठीक है, दे विल गिव यू फोर ऑप्शंस एंड दे विल से व्हिच ऑफ दीज फोर बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट इज अ मिरेकल प्ले और अ मिस्ट्री और अ मोरालिटी प्ले और अ इंटरलूड। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस। नाउ इवन बिफोर दैट यू शुड नो हाउ ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा बिगैन। ठीक है, नाउ इन अर्लियर टाइम्स there was the festival called Corpus Christi. Okay, Corpus Christi was a festival. And in earlier times, drama was not meant for entertainment. It was used by the church to teach religious principles, religious tenets to the common people. ठीक है, उस चीज के लिए चर्च जो है वो यूज करता था ड्रामा को। एंड लेटर ऑन एज मोर एंड मोर पीपल बिकेम एंथुजियास्टिक अबाउट इट, ड्रामा मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ काइंड ऑफ रिलीजियस सर्मन और अ काइंड ऑफ टीचिंग टू एंटरटेनमेंट। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल, कॉर्पस क्रिस्टी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मिस्ट्री प्लेज, ये क्या होता है? सी मिस्ट्री प्लेज यूजली रिप्रेजेंट बिब्लिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द बाइबल एंड दे डिपिक्टेड सच सब्जेक्ट्स एज क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, देन एडम, ईव, मर्डर ऑफ एबल एज वेल एज द लास्ट जजमेंट। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल फाइंड इन अ मिस्ट्री प्ले। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज अ मिरेकल प्ले, ये क्या होता है? सी मिरेकल प्लेज present a real or fictitious account of the life, miracles or martyrdom of a saint. ये एक definition है, ठीक है? It's just about the life, the miracles which a saint did and the eventual martyrdom of a saint. ठीक है? Now let's come to morality play. What is a morality play? Now in a morality play, the characters that are there, they personify moral qualities such as vice, such as charity or abstract principles such as death, youth. ठीक है, एंड इन द मोरालिटी प्लेज दे वॉन्ट टू टीच अ मॉरल लेसन। ठीक है, इसीलिए नाम है मोरालिटी। नाउ आफ्टर दैट कम्स इंटरलूड्स। व्हाट आर इंटरलूड्स? INTERLUDES, इंटरलूड्स क्या होता है? सी इंटरलूड्स वर परफॉर्म्ड एट कोर्ट और एट ग्रेट हाउसेस बाय प्रोफेशनल मिनिस्ट्रल्स और एमेच्योर्स एट इंटरवल्स बिटवीन सम अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, मान लो कि एक तरीके का कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है, व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरवल और अ काइंड ऑफ रिसेस, देन इंटरलूड विल बी परफॉर्म्ड। ठीक है, सो द इंटरलूड कैन बी परफॉर्म्ड बिटवीन यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक बैंक्वेट। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो फॉलो अ डिफरेंट प्ले और प्रिसीड अ डिफरेंट प्ले। सपोज अ पर्टिकुलर प्ले इज बींग एनएक्टेड, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इट एन इंटरलूड विल बी प्लेड और आफ्टर द एंडिंग ऑफ इट अ इंटरलूड विल बी प्लेड। ठीक है, एंड यू नो समटाइम्स इंटरलूड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन मिडीवल मोरालिटी प्लेज एंड ट्यूडर ड्रामाज। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दैट दे वर परफॉर्म्ड एट कोर्ट और एट ग्रेट हाउसेज बाय प्रोफेशनल मिनिस्ट्रल्स। And also remember that in those days they did not have cinema, they did not have movies, they did not have internet. Okay, so the only source of entertainment for the royals and the even the common people was these plays. Okay, that is why these plays were so important in the Elizabethan times. ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं था उन लोगों के पास। नाउ आफ्टर दैट लेट्स कम टू सम अर्ली ड्रामेटिक वर्क्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमेडी, द फर्स्ट ट्रेजेडी दैट वाज रिटन इन इंग्लिश? ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इस पे पहले भी सवाल आ चुके हैं एंड क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इवन इन फ्यूचर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले इज रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, RALPH, रैल्फ, ROYSTER, रॉयस्टर एंड DOYSTER, डॉयस्टर। दिस वॉज रिटन बाय निकोलस उडल। ठीक है, निकोलस उडल एंड इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1553। ठीक है, उसके बाद गॉर्बोडॉक, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉर्बोडॉक वॉज रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैगवाइल। ठीक है, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैगवाइल इन द ईयर 1561। ठीक है, 1561 में ही पब्लिश हुआ था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्ले है गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक है, गैमर गर्टन्स नीडल, GAMMER, गैमर, GURTON, गर्टन्स नीडल। दिस वॉज रिटन बाय जॉन स्टिल। ठीक है, STILL, जॉन स्टिल एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1562। ठीक है, उसके बाद एक और वर्क है जो आप ध्यान में रखना, इट्स द स्पैनिश ट्रेजेडी। ठीक है, द स्पैनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। ठीक है, KYD, किड। दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1587। ठीक है, 1587 में हुआ था पब्लिश। नाउ कीप इन माइंड दैट व्हेन आई से अ ड्रामा वॉज पब्लिश्ड, वट आई मीन इज इट वॉज एनेक्टेड. ठीक है, नाउ आई कीप ऑन सेइंग पब्लिशिंग पब्लिशिंग, बट इन दोज डेज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रामा वॉज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन और द ईयर ऑफ एनेक्टमेंट. ठीक है, नाउ इन द एग्जाम दे कैन आस्क यू विच ऑफ दीज आर कॉमेडीज, विच ऑफ दीज आर ट्रेजेडीज. ठीक है, तो रिमेंबर रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज अ कॉमेडी, गैमर गर्टन्स नीडल इज अ कॉमेडी. दीज आर द टू अर्लिएस्ट कॉमेडीज दैट वर रिटन इन इंग्लिश. ठीक है, उसके बाद द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड गॉर्बोडॉक, दीज आर द फर्स्ट ट्रेजेडीज दैट वर रिटन. इन पर्टिकुलर गॉर्बोडॉक, गॉर्बोडॉक वॉज पब्लिश इन द ईयर 1561, द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज पब्लिश इन 1587. ठीक है, एंड अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ गॉर्बोडॉक इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स. ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स, दिस इज द अल्टरनेटिव टाइटल और अल्टरनेटिव नेम. नाउ उसके बाद मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं अबाउट द स्पेनिश ट्रेजेडी. आई टोल्ड यू इट हैज बीन रिटन बाय थॉमस किड. ठीक है, नाउ दिस इज अ एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ रिवेंज ड्रामा और अ रिवेंज ट्रेजेडी. एक पॉइंट तो ये है, अलॉन्ग विद दिस यू शुड नो अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ दिस, वॉट हैपन्स इन दिस. सी, दिस प्ले ओपन्स विद द गोस्ट ऑफ एंड्रिया. ठीक है, एक एंड्रिया एक गोस्ट का नाम है, एंड देर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड हीरो नीमा. ठीक है, हीरो नीमा इज अ कैरेक्टर, ही इज अ स्पेनिश जेंटलमैन. वो बहुत ही उदास है, बहुत ही दुखी है, बिकॉज हिज सन हैज बीन मर्डर्ड. ठीक है, बट सम हाउ ही फाइंड आउट हु द मर्डरर्स ऑफ हिज सन आर. ठीक है, सो वट ही डज इज, वट दिस जेंटलमैन हीरो नीमा डज इज, ही डिवाइजेज अ प्लान टू मर्डर एंड किल द मर्डरर्स. ठीक है, सो ही डिवाइजेज अ प्ले दैट विल बी एनेक्टेड इन विच द मर्डरर्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. ठीक है, While everybody is enacting their role along with Hiro Nima, क्योंकि वो एक प्ले था, सिर्फ झूठ मूठ में मारना था, but what he does is, what Hiro Nima does is, he actually kills the murderers and then of course he kills himself. ठीक है, so this is what the storyline is. It's just about a murder that has been committed and then revenge. So that's why the name, it's a form of revenge drama or a revenge tragedy. ठीक है, and as I told you that Ralph Royster Doyster by Nicholas Udall is considered to be the first comedy that was written in English language. Now after that, let's talk about one more literary work. It's called Totel's Miscellany. ठीक है, TOTTEL, Totel, MISCELLENY, Miscellany. ठीक है, टोटल्स मिसेलेनी. नाउ दिस वॉज अ एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री दैट वॉज पब्लिश्ड. ठीक है, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1557. ये डेट आपको याद रखना है. एंड द नेम ऑफ द पब्लिशर वॉज रिचर्ड टोटल. ठीक है, रिचर्ड टोटल नाम था उनका. एंड ऑन हिज नेम द शॉर्ट फॉर्म और द शॉर्ट टाइटल इज जनरली रिफर्ड टू. ठीक है, जो ओरिजिनल टाइटल है वो काफी लंबा है, दैट्स वाई पीपल जनरली रिफर टू दिस वर्क एज टोटल्स मिसेलेनी. ठीक है, इट्स अ एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री. नाउ लेट मी टेल यू दैट ऑल द पोएम्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस एंथोलॉजी वर रिटन बाय ब्रॉडली टू पीपल. वन वॉज थॉमस वियट. ठीक है, थॉमस वियट एंड हेनरी हावर्ड. हेनरी हावर्ड वॉज द अर्ल ऑफ सुरे. ठीक है, अर्ल ऑफ सुरे बेसिकली मीन्स यू नो इट्स अ पोजिशन इन इंग्लैंड जिसे अर्ल कहते हैं. ठीक है, सो इफ देर इज अ क्वेश्चन एज टू हु आर द ऑथर्स ऑफ the poems that are included in this volume, two people are there, Henry Howard who was the Earl of Surrey and the second one was Thomas Wyatt. Okay, Wyatt. And sometimes what they do in the exam is they also ask you the complete title of this anthology. Okay, now Totel's Miscellany is the short form. Let me tell you the complete title. It's called Songs and Sonnets written by the Right Honorable Lord Henry Howard, late Earl of Surrey and other. ठीक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स रिटन बाय द राइट ऑनरेबल लॉर्ड हेनरी हावर्ड, लेट अर्ल ऑफ सुरे एंड अदर. ये टाइटल है इसका. नाउ अलॉन्ग विद दिस लेट मी टेल यू टू मोर फैक्ट्स. ठीक है, नाम है इसका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, राइट. सो इन टोटल देर आर अराउंड 271 पोएम्स इन दिस. ठीक है, आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस सोनेट्स कितने हैं? सोनेट्स आर 54. ठीक है, 54 सोनेट्स आर देयर. एंड वन मोर फैक्ट यू शुड नो अबाउट दिस टोटल्स मिसेलेनी, दैट दिस वॉज द फर्स्ट printed anthology of English poetry. ठीक है, that is why I have mentioned this and that is why it is important. First anthology थी ये. और जो भी मैंने fact आपको बताया definitely note it down, because on all of these issues questions have been asked in previous years. ठीक है, so don't neglect all of this. So from an exam point of view क्या क्या हमने discuss किया? In the first lecture we discussed what was Vanessa, what was the Reformation, what was humanism, and in this lecture we discussed the works of John Skelton. Along with that we also discussed what is Skeltonics. Okay? After that we also discussed the works by Sir Thomas Malory, and in particular we discussed about King Arthur and the book of Thomas Mallory, which is Lee Morty D. Arthur. Okay? Along with this, we also discussed few more writers, such as Thomas Moore, who wrote Utopia, Erasmus, who wrote Praise of Folly, okay? And also Roger Ascham. Unke work ka naam kya tha? Toxophilus, The School of Shooting. Okay? Afterwards, we discussed about the evolution of English drama. In particular, we started with the Festival of Corpus Christi. Uske baad, what is the difference between mysteries, miracles, moralities, as well as interludes. Uske baad humne discuss ki, what is the first tragedy and first comedy in English language that was written. Theek hai? We discussed about Ralph Doister. We discussed Gorbodok. We discussed Gammer Gurton's Needle. We also discussed the Spanish tragedy. And finally, we also discussed Tottel's Miscellany. And Tottel's Miscellany, as I told you, was the first printed anthology in the English language. Theek hai? That is why this is important. ठीक है.